अगला अध्याय समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता, अनुच्छेद 16 में आर्थिक समानता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। समानता का अधिकार प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है, अतः भारतीय संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर और सामाजिक समानता प्रदान की गई है। साथ ही समानता की स्थापना हेतु उपाधियों का निषेध किया गया है। समानता के अधिकार का विस्तृत विवरण भारतीय संविधान के भाग 3 के वर्णित मौलिक अधिकारों की श्रेणी अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 15 और अन्य अनुच्छेद केवल नागरिकों को लागू होता है। संविधानतः भारत में धर्म, जाति, वर्ण, जन्म, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर राज्य के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता और समता शब्द फ्रांस की क्रांति की देन है। समता मानवता का एक पवित्र आदर्श है। ब्रिटिश विधिशास्त्री ए भी डाइसी के अनुसार विधि के समक्ष समता विधि का शासन का अनिवार्य अंग है। कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 14 राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है, जबकि कानून का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान की। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और राज्य पर यह बंधन लगाया गया है कि सभी व्यक्तियों हेतु एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। कानून छोटा बड़ा, उच्च नीच या छूत अछूत में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, जाति, वंश, लिंग, वर्ण तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रश्रय नहीं देगा। पश्चिम बंगाल बनाम अनवर अली के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टता शब्दों में कहा कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्ति के साथ कानून का व्यवहार एक सा होना चाहिए। कानून के समक्ष समानता के अधिकार का यह सकारात्मक पहलू है। सकारात्मक पहलू के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। अपने अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार सभी व्यक्ति को प्राप्त है, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी। भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को यह अधिकार समान रूप से प्राप्त है, परंतु कानून के समक्ष समता का तात्पर्य कतई नहीं कि राज्य किसी विशेष उद्देश्य से नागरिकों का उचित तथा तर्कसंगत वर्गीकरण नहीं करेगा। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कर निर्धारण या किसी अन्य सामान्य उद्देश्य से सरकार नागरिकों को विभिन्न वर्गों में रख सकती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसी विचार को अपनाया है। न्यायाधीश दीक्षित कानून के समक्ष समता का अर्थ व्यक्तियों की पूर्ण समानता नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ यहाँ की जन्म, जाति या अन्य समान कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। कानून के समान संरक्षण का अर्थ यह है कि स्वयं कानूनों के प्रशासन में मनमाना भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 केवल राज्य द्वारा किए जा सकने वाले प्रभेद पर ही रोक लगाता है, व्यक्तियों के प्रभेदपूर्ण व्यवहार पर नहीं। व्यक्ति के आचरण पर इस प्रकार की रोक लगाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण होगा। सामाजिक समानता, सोशल इक्वलिटी, अनुच्छेद 15 में है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आगे इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर किसी भी नागरिक को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। राज्य को स्त्रियों और पालनों के लिए विशेष प्रबंध की शक्ति, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से राज्य विधि द्वारा प्रेरित अथवा साधारण जनता के लिए बनवाए गए कुओं, घाटों, स्थान गृहों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपभोग से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा। संविधान के इस अनुच्छेद पर महात्मा गांधी के विचारों का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद का महत्व इस बात में है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को निषिद्ध ठहराकर समाज में फैली हुई सामाजिक असमानता को दूर करता है, क्षेत्रीयता एवं प्रांतीयता की जड़ें काटता है, एकल नागरिकता की पुनर्स्थापना के आदर्श की पूर्णता में सहायक सिद्ध होता है तथा राज्य और व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले भेदभाव को रोकता है। आर्थिक समानता, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, अनुच्छेद 16 में इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इसमें पहला, राज्य के अधीन किसी पद या नियुक्ति से संबंधित विषयों के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे। दूसरा, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी नौकरियां या पद के संबंध में अपात्र। संविधान इस अनुच्छेद द्वारा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है जिसमें सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति हेतु समान अवसर उपलब्ध हो, चाहे वे भारत के किसी राज्य के निवासी क्यों न हों। इस उपबंध द्वारा भारत की एकल नागरिकता पर जोर दिया गया है। पुनः राज्य पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि सरकारी नौकरी या पदों के संबंध में वह जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, आवास आदि के आधार पर नागरिकों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। आर्थिक समानता या अवसर की समानता के अधिकार के निम्नलिखित अपवाद प्रमुख हैं। संसद चाहे तो विधि द्वारा किसी राज्य के या स्थानीय पद के वहीं के निवासियों हेतु आरक्षित कर सकती है। इस संबंध में नियम निर्धारित करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है ताकि अर्हताएं एक सा हो। इस अपवाद का प्रमुख उद्देश्य राज्य विशेष के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति कर शासनिक कुशलता बढ़ाना था। तीसरा, राज्य को नागरिकों के उन पिछड़े हुए वर्गों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों में पदों को आरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार राज्य पिछड़ी जाति हेतु कुछ पद आरक्षित कर सकता है। अस्पृश्यता की समाप्ति, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को भारतीय संविधान समाप्त करता है तथा किसी न किसी प्रकार इसे व्यवहार में लाना एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को संशोधित कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया है। सभी को सार्वजनिक जगह का प्रयोग करने की छूट होगी। स्नान घाट, कुआं, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। पहला, सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि के सिवा और कोई उपाधि राज्य प्रदान नहीं करेगा। दूसरा, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति को सम्मति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। चौथा, राज्य के अधीन लाभप्रद या विश्वासप्रद पद आसीन कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धियां या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ब्रिटिश शासनकाल में राय बहादुर, खान बहादुर, सर आदि की उपाधियां दी जाती थीं। नवीन संविधान के अंतर्गत उसका अंत कर दिया गया है तथा अब भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि उपाधियों की व्यवस्था की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर रोक, अनुच्छेद 24, बाल श्रम पर रोक, 14 वर्ष से कम आयु। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 के द्वारा 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। पहला, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, बिना हथियार या तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा, समुदाय एवं संघ निर्माण की स्वतंत्रता। चौथा, भ्रमण की स्वतंत्रता। पांचवा, निवास की स्वतंत्रता। छठा, व्यवसाय की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में कानून का उल्लंघन न होने तक दंड से स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। अनुच्छेद 21 में जीवन और शरीर रक्षण का स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा शारीरिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22, बंदीकरण की अवस्था में स्वतंत्रताएं। बंदी बनाने के कारणों को बताए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी नहीं बनाए रखा जा सकता है। उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव का प्रबंध करने का अधिकार होगा तथा बंदी बनाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायालय में उपस्थित करना होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 एवं 24 में। अनुच्छेद 23 में मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक। मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक लगा दिया गया है जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 24, बाल श्रम अर्थात बच्चों को कारखानों खानों आदि में नौकर रखने का निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखानों खानों तथा अन्य किसी जोखिम भरे नाम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27 एवं 28 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 25 में धार्मिक आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार धार्मिक आचरण और धर्म प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता में पहला, धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों के लिए संस्थाएं बना सकेंगे और उनका संचालन कर सकेंगे। दूसरा, धार्मिक मामलों का प्रबंध कर सकते हैं। तीसरा, संपत्ति अर्जित कर सकेंगे तथा धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति का प्रबंध राज्य के कानून के अनुसार कर सकेंगे। अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्यों के लिए की जाने वाली व्यय राशि कर से मुक्त। ऐसी समस्त आय को कर से मुक्त कर दिया गया है जो धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों में खर्च करना निश्चित किया गया हो। अनुच्छेद 28, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करके एवं न करने की स्वतंत्रता। राजकीय निधि से संचालित विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में धर्म शिक्षा बाध्य नहीं किया जाएगा। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है तथा सरकारी सहायता से संचालित शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालयों का शरण ले सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अग्र 5 प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख या उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जा सकता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। फिर दोनों पक्षों की बात सुनकर न्यायालय निर्णय देता है। यदि अवैध बंदी है तो मुक्त कर दिया जाता है। दूसरा, परमादेश। यह लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी या संस्था अपने सार्वजनिक कर्तव्य का दायित्व का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को कार्यपालन का आदेश दिया जाता है। तीसरा, प्रतिषेध। इस लेख का प्रयोग उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों को उसके अधिकार क्षेत्र अथवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करने से रोकने के लिए जारी कर सकता है। इस लेख द्वारा सर्वोच्च न्यायालय किसी न्यायालय को उस मुकदमे की सुनवाई करने से रोक सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चौथा, उत्प्रेषण। इस लेख द्वारा किसी निम्न न्यायालय को उसके समस्त पड़े मुकदमे को ऊपर के न्यायालय में भेज देने का आदेश दिया जाता है। इस प्रकार न्याय करने का अधिकार निम्न न्यायालय से छीनकर ऊपर के न्यायालय को दे दिया जाता है तथा निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय सूचना की विवाद के संबंध में प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा, अधिकार पृच्छा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है तो न्यायालय अधिकार पृच्छा द्वारा उसे व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। जब तक वह संतोषप्रद उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है।